पादुकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। जीवादि तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणाश्रयाय, जो जीवादि तत्वों का प्रतिपादन करने वाले हैं और जो सम्यक दर्शन को लेकर के प्रथम लेकर के मुख्य आठ गुणों से युक्त हैं, और प्रशांत रूपाय, जिनका रूप अत्यंत शांत है और कैसा है, दिगंबर है, ऐसे देवादि देवाय नमो जिनाय, ऐसे देवादि देव भगवान के लिए मेरा प्रणाम। बहुत अर्थ बहुत आसान नहीं है। जीवादि सात तत्वों के प्रतिपादन करने वाले, सम्यक दर्शन आदि आठ गुणों के आश्रयभूत, या कि उनके सम्यक दर्शन आदि मुख्य आठ गुणों को धारण करने वाले और प्रशांत रूप वाले दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले ऐसे देवों के भी देव जिनेंद्र भगवान को मेरा प्रणाम है, मैं नमस्कार करता हूं। अब फिर ज्यों का त्यों आ गया अनुष्ठुप, चिदानंदैकरूपाय जिनाय परमात्मनि परमात्मनः प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मनि नमः। चिदानंदैकरूपाय, और चेतना का आनंद ही जिनका स्वरूप है, या जो अपने आत्म आनंद में लीन हैं, उसी रूप हो गए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं कि वे अपने आत्मा में लीन हैं। कोई भी व्यक्ति आत्मा में लीन हो तो अलग दिखाई पड़ता, और आत्मा के आनंद में लीन है तो चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो किस बात की प्रतीक है कि वे अपने आत्मानंद में लीन है। ऐसे अपने आत्मानंद में लीन रूप वाले जिनेंद्र भगवान, जो कि परमात्मा है अर्थात सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, उनके लिए परमात्मनः प्रकाशाय, मैं अपनी परमात्मा के प्रकाशित करने के लिए नित्यम सिद्धात्मने नमः, ऐसे नित्य ही सिद्ध भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ऊपर किसको प्रणाम किया, अरहंत भगवान को, और अब सिद्ध भगवान को, दोनों जिनेंद्र हैं। एक लाइन में सिद्ध भगवान को, एक लाइन में देखिएगा अरहंत भगवान को। चिदानंद ही, या कि आत्मा का आनंद ही जिनका स्वरूप है, और कोई रूप बाहर से दिखाई नहीं पड़ रहा, आत्मा का आनंद ही जिनका रूप है, ऐसे जो जिनेंद्र हैं और जो परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उनके लिए परमात्मना प्रकाश आए, मैं अपने आत्म प्रकाश के लिए, या कि जिन्होंने अपने परमात्म प्रकाश को प्रकट कर लिया है, ये अर्थ भी लेना चाहें तो ले सकते, क्योंकि दोनों अर्थ निकलते हैं। चतुर्थी विभक्ति के साथ ये है कि प्रकाशाय लिखा ना, महावीराय, तो महावीर स्वामी के लिए, तो उसी तरह ये लिखेंगे परमात्मनः प्रकाशाय, अपने आत्मा के प्रकाश के लिए, या जिन्होंने अपने आत्मा का प्रकाश कर लिया उनके लिए, ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो जिन्होंने अपने परमात्म प्रकाश को प्राप्त कर लिया उनके लिए ऐसे सिद्ध आत्मने नमः नित्यम, ऐसे मैं सिद्ध आत्मा को, या कि सिद्ध परमेश्वरी को नित्य हमेशा नमस्कार करता हूं। अब आधा हो गया है? अब इसको पढ़िएगा, उच्चारण सीखिएगा, फिर पूछिएगा कि इसमें कैसा आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब बस चुपचाप सुनते भरे हैं, पूछता पूछता कोई नहीं।
अक्टूबर का प्रवचन शुरू होता है।
दर्शनम देवो देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन किनेन्द्रा चंदनेन चा नाचिरं तिष्ठते पापं चित्रहस्ते यथोदकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारभ्रान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे जीवादितत्वप्रतिपादकाय सम्यक्तमुख्याष्टगुणान्वाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय चिदानंद एकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मनः प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। इतना अपन पढ़ चुके थे। अब जो है वो ये भी अनुष्टुप संधि है, आगे वाला भी जैसे अपन ने दर्शनम देव देवस्य पढ़ा वैसे ही आगे। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रयी वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। अन्यथा शरणम नास्ति, मुझे और कोई शरण नहीं। पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे और कोई शरण नहीं। त्वमेव शरणम मम, इसलिए अब जबकि यहां मैं अशरण हो गया हूं, मुझे सिर्फ एकमात्र आपकी ही शरण है। मुश्किल यहां ये होती है कि हम किसी की शरण तो ले लेते हैं, लेकिन हमें और दूसरी जगह भी शरण दिखाई पड़ती है। इसलिए हम शरण ले लेने के बाद भी पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। इसलिए पहले लिखना पड़ा कि अन्यथा शरणम नास्ति। अब जब मेरे लिए संसार में कोई शरण नहीं है, त्वमेव शरणम मम, एकमात्र आप ही शरण है, तस्मात् लॉजिक दे सकते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं। अब जब कोई मेरी शरण ही नहीं है भगवान, तस्मात् अब इसलिए जो है कारुण्य भाविन, आप अपने करुणा भाव के द्वारा रक्ष रक्ष जिनेश्वरा मेरी रक्षा करिए। ये कहने का अधिकार कब बनेगा? जब पहली लाइन कि मेरी कोई शरण ही नहीं, जैसे अपन जाके कह देते हैं कि मेरे लिए तो कोई शरण ही आप ही हो, तो अब आप ही मेरे ऊपर करुणा करके मेरी रक्षा करिए। सीधा वही अर्थ इसमें है कि मेरे इस संसार में कोई शरण नहीं है, मेरा कोई सहाय नहीं है, एकमात्र आप ही शरण है। इसलिए अब आपका फर्ज बन जाता है कि मुझ अशरण के लिए करुणा करके शरण दीजिएगा, मेरी रक्षा करिए। ये भाव उस समय आना चाहिए। पर उस समय अपने लिए और बहुत सी शरण है, पैसा भी शरण है, दुकान मकान सब शरण है, यही तो मेरी शरण है, ये नहीं होंगे तो मैं तो अशरण, यहां क्या करूंगा मैं। ऐसा मन में उस समय नहीं होना चाहिए। हम दुनिया की सब चीजों में शरण मान लेते हैं और भगवान को भी शरण मान लेते हैं, तो कहते यही गड़बड़ होती है। गुरु और साधु में इतना ही फर्क है, साधु सब हैं, गुरु सिर्फ एक होता है जिसके प्रति हम बाकी सबको छोड़ करके डिवोट हो जाते हैं, समर्पित हो। यही चीज इसमें है कि मैं आपको परम गुरु, मैं ही आपको देव, मैं आपको सब कुछ मान रहा हूं, मेरा कोई नहीं है, अब तो प्लीज आप करिए कुछ। ऐसा है सीधा सीधा। हाँ, कोई भी अपन किसी से भी कहते हैं कोई काम करने के लिए, तो वो टाला मटूली करता तो अपन क्या कहते हैं, नहीं देखिए आप कोई भी नहीं है। हाँ, कोई थोड़ा होता तो फिर भी आप टाल सकते थे कि और दूसरी जगह कर लूंगा, लेकिन कोई भी नहीं है तो कहां जाऊं। वो भाव इसमें है कि मेरी कोई, यहां मैं अशरण महसूस करूं यहां पर, तब मुझे शरण मिलती है, तभी मेरे ऊपर उसके द्वारा कृपा होती है, ये इसमें भाव। और फिर आगे और ज्यादा, अब अभी भी मान लो सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या कहते हैं, नहीं त्राता रक्ष रक्ष जिनेश्वरा, मेरी रक्षा करिएगा, आपके सिवाय नहीं है, तीन बार कह रहे हैं मन से वचन से काय से, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं, जगत त्रय तीनों लोकों में, यहां नहीं, तीनों लोकों में मेरे लिए आपके जैसा त्राण करने वाला, आपके जैसा मेरा बचाव करने वाला, त्राता मतलब बचाने वाला, आपके जैसा मेरी रक्षा करने वाला या बचाने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। किस बीतरागा परो देवो न भूतो न भविष्यति, बीतरागता के अलावा कोई न देव कभी हुआ है न कभी होएगा। इतना डीप डिवोशन, अब बताइएगा बीतरागी के अलावा कोई देव न आज तक हुआ है न आगे होएगा, इसलिए इन तीनों लोकों में आप ही मुझे बचाने वाले हैं। जिनेर भक्ति
दिने दिने, सदा मेस्तु
भवे भवे,
जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवेत् चक्रवर्त्यपि, स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि, जिन धर्मानुवासितः,
जिने भक्तिर् दिने दिने, मुझे रोज रोज प्रतिपल जिनेंद्र भगवान की और सिर्फ जिनेंद्र भगवान की भक्ति का लाभ मिले। और इतना ही नहीं, इस जीवन में ही नहीं, सदा में अस्तु, और यह मुझे हमेशा हो भवे भव में, हर जन्म में मुझे यह जिनेंद्र भगवान की भक्ति का लाभ हो, तीन बार कह रहे हैं, सदा में भवतु, मुझे ये लाभ, मैं अस्तु तीन बार कह रहे हैं, सदा में अस्तु, मुझे हमेशा हो भव में ये, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कितने भाव हो सकता है, कि एक ही भाव हो तो बहुत अच्छा है, तो मुझे अगले भाव में हो। और ऊपर की लाइन में इसलिए कह गए हैं कि जिने भक्तिर दिने दिने, मुझे रोज रोज हो, और अगर मेरा जीवन समाप्त हो जाए अगला भाव ना हो तो एक ही लाइन पर आप आगे कह रहे हैं जाकर के। अब ऊपर की लाइन देखिएगा कि मुझे जिनेंद्र भगवान की भक्ति रोज रोज हो, फिर इस जीवन में तो हो ही, अगर अगला जीवन मिले तो मैं कहता हूं कि मुझे वहां भी हो। इतना बड़ा, सिर्फ एक ही जीवन में हो ऐसा नहीं कह रहे हैं, अगर अगला जीवन मिले ये भी नहीं कह रहे हैं कि मुझे मिले ही, मुझे मालूम है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से तो मेरे सारे भाव कट जाएंगे, पर अगर मुझे भाव धारण करना भी पड़े तब भी मुझे जिनेंद्र भगवान का सानिध्य ना छूटे। और आगे कहते हैं, जिन धर्म विनिर्मुक्तो, ये बनिर्मुक्तो लिख दिया उन्होंने, विनिर्मुक्तो होना चाहिए, जिनेंद्र भगवान या जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए धर्म से रहित होकर के, मां भवे चक्रवर्ती अपि, मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता, अगर मुझसे मेरा जिन धर्म छूटता है तो मुझे चक्रवर्ती भी नहीं होना। मुझे पसंद है स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि, मुझे किसी की नौकरी करना और दीनहीन दरिद्री होना पवित्र पसंद है। जिन धर्मानुवासिता, जिनेन्द्र भगवान की शरण को प्राप्त करके उससे मेरा जीवन सुवासित हो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए धर्म से मेरा जीवन यदि सुवासित हो तो मुझे दरिद्रता मंजूर है, मुझे किसी की नौकरी करना चेट मतलब नौकर होना भी मुझे पसंद है, लेकिन मुझे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के बिना चक्रवर्ती होना भी पसंद नहीं है। ये इतना बड़ा डिक्लेरेशन है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत भीतर वो चाहिए, बहुत सैक्रिफाइस करना। सब कुछ तो छोड़ने तैयार है ना वो भगवान के प्रति, यही तो प्रकट हो रहा है। और फिर इसके बाद कहते हैं जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोट्यमुपार्जितम जन्म मृत्यु जरारोगम हन्यते जिन दर्शना। मैंने मांग तो लिया भाव भाव के लिए, लेकिन अब मैं जान रहा हूं कि जन्म जन्म कृतम पापम, मेरे जन्म जन्म के पाप और जन्म कोटि उपार्जितम, कई जन्मों से संचित किए हुए पाप और ये जन्म मृत्यु जरा और रोग सब, अगला जन्म भी मेरा नष्ट होने वाला है। अगला जन्म मांग तो लिया है पर कह रहे हैं कि नष्ट हो जाएगा। जन्म मृत्यु जरा रोग हन्यते जिन दर्शना, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से मेरा ये सब कुछ, जन्म जन्म का संचित पाप और जन्म मरण का ये चक्कर, मेरा सब समाप्त हो जाएगा। मैं आखिरी में ये भी डिक्लेयर करता हूं। भक्ति तो बहुत अद्भुत है, इसमें है बहुत छोटा सा लेकिन भाव बहुत जबरदस्त है। अब कहते हैं बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, जन्म तस्मात कारुण्य, तस्मात कारणार्थ, इस कारण, इसी कारण, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं अन्यथा आपके सिवा कोई शरण नहीं है, आप ही शरण है, इसलिए इस कारण से, लॉजिक दे रहा हूं मैं, तस्मात मतलब इस कारण से, करुणा भाव, कारुण्य मतलब करुणा भाव, स्यात मतलब कथनचित, यदि ऐसा हो कि मुझे दरिद्री होना पड़े, किसी की नौकरी करना पड़े, चेट अर्थात किसी का नौकर होना पड़े तो भी मंजूर है। जिन धर्म अनुवासिता, मेरा जीवन भर जो है जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से सुवासित हो तो मुझे ये भी पसंद है, पर मुझे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के बिना चक्रवर्ती होना पसंद नहीं। मतलब मुझे संसार की कोई संपदा नहीं चाहिए, सीधा सीधा ये अगर उसके एवज में मिलती है। अब ये वसंत तिलका है, भक्तांबर की तरह पढ़ा जाता है, अत्याभवत सफलता नैन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज भीक्षणेन लोक तिलक प्रतिभाषते मे संसार वारिधिरयम चुलक प्रमाणम। ये कह रहे हैं सब कुछ दर्शन हो गया भगवान का, अब इसके बाद कह रहे हैं अच्छे से दर्शन कर लिए, आखिरी में कह रहे हैं अध्याभव सफलता नैने त्वयस्य, आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए, दर्शन हो गया, दर्शन पाठ भी पढ़ लिया, अद्य आज भवत हो गया है सफल, क्या नयने द्वेष, मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। देवत त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणे न, किस लिए क्यों सफल हो गए, क्योंकि मैंने हे भगवान आपके चरणों की वंदना या कि आपके चरणों का दर्शन कर लिया है, इसलिए मेरी आंखें दोनों नेत्र सफल हो गए। अध्या त्रिलोक तिलका प्रतिभास ते में, और हे तीनों लोक के तिलक, मुझे ऐसा मालूम पड़ने लगा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, प्रतिभास ते में मेरे भीतर मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार बारधिरी अयम चुल्लक प्रमाणम, मेरा जो अनंत संसार है अब चुल्लू भर रह गया है। अपने आप डिक्लेयर कर रहे हैं खुद ही, वहां कोई कहने वहने वाला नहीं है, हम खुद ही आपके सामने जाके कह रहे हैं कि आज मेरे दोनों नेत्र आपके चरण कमल के दर्शन करके सफल हो गए हैं, और इतने नहीं हे तीनों लोगों के नाथ, मुझे आपके दर्शन से ऐसा भीतर ही भीतर एहसास होने लगा है कि संसार का इतना बड़ा समुद्र जैसे कि सब सूख गया हो, सिर्फ चुल्लू भर पानी जैसे शेष रह जाता, ऐसा ही मेरा संसार जरा सा रह गया। जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कह रहा था ना, आनंद संसार और अर्ध पुद्गल परावर्तन, उसको कंपेयर किया है कि आनंद संसार मान लो समुद्र है और उसमें चुल्लू भर पानी जैसे है, ऐसे ही अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होता है। सम्यक दर्शन के बाद संसार इतना ही रह जाता है, और वही बात यह है कि आपके दर्शन से मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, अब मेरा आनंद संसार सिमट के अर्ध पुद्गल परावर्तन चुल्लू भर रह गया। ये पुद्गल परावर्तन मतलब पांच प्रकार का परावर्तन होता है, उसमें एक पुद्गल परावर्तन है, हमने अपने शरीर की छोटी सी अवगाहना से लेकर के बहुत बड़ी अवगाहना तक बनाने के लिए जितने भी मटेरियल था संसार का वो कई बार ग्रहण किया और कई बार छोड़ा है, और छोटी सी अवगाहना से मैंने इतनी सी अंगुल के असंख्यात में भाग की बराबर के जीव से लेकर के वो 500 धनुष तक के बड़े इतने जीव तक मैंने सब शरीर धारण किए हैं और धारण करके छोड़े हैं, इसमें जितना समय लगा है उतना काल अनंत काल है, छोटा नहीं है। ये बोलते हैं पुद्गल परावर्तन, उन पुद्गलों को ग्रहण किया, अगले क्षण छोड़ा, फिर पूरा एक उस सर्पनी और सर्पनी चला गया, फिर उसको ग्रहण किया, फिर छोड़ा, इस तरह मैंने एक अंगुल के संख्यात में भाग से लेके छोटे शरीर से कितना बड़ा शरीर बनाया 500 धनुष, उसमें मुझे जितने पुद्गल परमाणु लगे हैं बनाने में, उन सब पुद्गल परमाणुओं को कितनी बार छोड़ के कितनी बार ग्रहण किया है, इसमें जितना समय लगा वो कहलाता पुद्गल परावर्तन, और उसका आधा अर्ध पुद्गल। इस तरह ये स्तुति फिर से बताऊं, जीवादी तत्व को प्रतिपादन करने वाले सम्यक दर्शन आदि मुख्य आठ गुणों के आश्रयभूत और जिनकी मुद्रा अत्यंत शांत है और दिगंबर मुद्रा है, ऐसे अनंत भगवान को मेरा नमस्कार हो, देवादि देवाय नमो जनाय उनको मेरा नमस्कार हो, और चिदानंद एक रूपाय, चेतना के आनंद में डूबे हुए हैं, चेतना का आनंद ही जिनका अपना रूप है, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा और के लिए मैं अपने परमात्म प्रकाश के लिए नित्य ही प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर सिद्धात्मा को प्रणाम किया है, एक अरहंत उपादान की कमी है, पल्ले में थोड़ा है, चाहते तो बहुत है, कौन नहीं चाहता, लेकिन उत्तर करके लाए होते तो चाह हुआ सब संभव हो जाता। हीन सहनन है और ज्ञान भी अल्प है और परिणामों की निर्मलता जल्दी से नहीं हो पाती, इसलिए तो यहां जन्म लिया अपन ने, नहीं तो विदेह में नहीं जन्म लेते, अगर परिणामों की श्रेष्ठता होती तो वहां के मनुष्य बनते। इस पंचम काल के मनुष्य बनने का मतलब ये है कि हमारी उतनी योग्यता नहीं थी, पर इतनी थी कि बन तो गए मनुष्य कम से कम, और इतनी योग्यता भी थी कि सानिध्य मिल गया, अब सानिध्य मिलने के बाद उसका उपयोग कर ले, तो ये योग्यता और बहुत दुर्लभ है। जीवन में नीरसता जीवन बहुत नीरस है क्योंकि बौद्धिक है, भावात्मक कम है, ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ, हमेशा इसी चीज पे जोर देता हूँ कि हम जितने अधिक बौद्धिक हो गए हैं, काश उतनी अगर भावात्मक होती तो हमें ये सब बातें कहने सुनने सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बेटे को कब कहना पड़ता माँ को, जब थोड़ा बुद्धिमान हो जाता, वैसे नहीं कहना, तब वैसे तो आंख दिखाने से इशारा समझ जाता, भावना पहचान जाता, बात को जब जरा होशियार हो जाता है तो फिर सब एक एक चीज सुहा जैसे पढ़ाऊंगे पड़ा, भैया जो नहीं करने तुम्हें जो करने, या हमारी बात नहीं मानते तुम, कब थोड़ा बौद्धिक हो जाता। जब तक भावात्मक रहता तब तक तो इशारा समझता है। वैसे अपन के साथ इतने अपन रूढ़ हो गए हैं कहना चाहिए, अपनी अपने ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन छोटी छोटी चीजों का। पहले कहीं कोई किसी की मृत्यु सुन लो तो थोड़ी तकलीफ होती थी, अब तो हजारों लोग मरते रहते हैं, रोज पेपर पढ़ते हैं और पलट देते हैं उसको, कोई अपने भीतर पानी जरा भी हिलता नहीं। वेदना शून्य, संवेदना शून्य, शून्य तो नहीं कहना चाहिए,
संवेदनशीलता बढ़ती जा रही, संवेदनशीलता कम हो रही है ऐसा कहना
चाहिए। संवेदनशीलता अभी है, जहां तक अपनापन है वहां तक,
जिन चीजों से
उनमें है अभी जिंदा है वहां स्वार्थ है, ये जहां हमारा मोह है वहां हम आज भी संवेदनशील है।
ऐसा समझ में आया महाराज जी कि पहले बहुत समय पहले लगता था कि हमको प्रेम दे देता है नहीं होता, पर जिस दिन ये समझ में आया कि प्रेम देना नहीं है, देना है तो पता चला कि हम बहुत प्रेमी होते जा रहे हैं,
स्वयं
है, स्वयं और देने भी योग्य सक्षम है,
फिर भी नहीं
इधर आनंद का सोता फिर बहने लगता, तो फिर वो प्रफुल्लता आने लगती है। अभी क्या है, हमको अपेक्षा ही अपेक्षा रहती है
दूसरे से,
हमको प्यार करे या हमको आए, तो वीकनाथ प्रभु के दर्शन से जो भाव है कि मुझे ना अपेक्षा रहे कोई
तब आता है
इधर से भी
सही सब समझते हुए भी अपन कितने मजबूर हो जाते हैं कई बार, सब समझते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं समझते, अपना अच्छा बुरा आदमी हर समझता है, भक्ति क्या होती है बुद्धि क्या होती सब समझता है, पर जहाँ भक्ति हो जाना चाहिए वहाँ भक्त नहीं हो पाता, जहाँ बुद्धि होना चाहिए इतना ही तो है ही, और क्या खेल तो इतना ही है संसार, अगर वो इतना हो जाए तो फिर मजा है, आनंद आने लगता है, जहाँ थोड़ा सा भी जो है भक्ति भाव से भरता है आनंद आने लगता है, उसी को अपन कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगा हमको, हमको इस चर्चा से बहुत आनंद आया। विनोबा पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का हुआ, तो अपनी माँ का हुआ, वो माँ के हर कृत्य का नहीं, माँ के एक विशेष कृत्य का, कि जब भी शाम होती थी परमा भगवान के सामने हाथ जोड़ती थी और प्रार्थना करती थी, वो प्रार्थना के अंत में कहती थी कि भगवान मैं बहुत अपराधी हूँ, और जैसे ही इतना कहती थी और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगते थे, और विनोबा पास खड़े सिर्फ यही देखते रहते थे, उनके समझ में कभी ये नहीं आया कि माँ ने क्या कहा, उनके समझ में ये आता था कि भगवान के सामने माँ रोज शाम को रोती है, बस ये इंप्रेशन उनके भीतर भक्ति का, इससे बड़ा इंप्रेशन नहीं पड़ा कि मेरी भक्ति तब सफल होगी जब भक्ति करते करते मेरी आंख में से आंसू आ जाए, तो मेरी भक्ति ठीक, नहीं तो ठीक तो माँ की भक्ति, सच्ची भक्ति तो माँ की, मेरी आंख में तो आंसू ही नहीं आते, मैं बौद्धिक हो गया बस, तो इस बात से उन पर रोना आ जाता था, तो आंसू आ जाते कि मैं बौद्धिक क्यों हो गया, ये कि उन पर सबसे गहरा असर विनोबा पर पड़ा। आज का ऐसा है ही नहीं समय, तो कैसे पड़ने असर कैसे पड़ेगा, अगर किसी की आंख में आंसू देख लो तो भी झूठे मालूम पड़ते हैं, अरे कोई ना कोई स्वार्थ होगा इसलिए रो रहा है। इस वजह से इतना मैंने जो संवेदनाएं कम होने का कारण क्या है, क्योंकि बचपन से संवेदनशील नहीं बना, उसमें लिखा कि वो आते थे कोई भी खाने की चीज आती थी कोए लिखा हुआ है, कोई चीज होती थी कोए, तो दाने होते थे उसके जैसे मटर पल्ली के दाने वैसे, तो जब भी आते थे घर में तो सबसे पहले वो कहेगी, माँ कहेगी विनय जाओ तो आसपास अपने सब मित्रों को बांट कर दुआओ, तो फौरन भागते हुए जाते थे सब मित्रों को बांट के आते थे, अब कितने बचे माँ इतने थोड़े से बचे, अब विनय ये तुम्हारे खा ले, शुरू कोई भी दिन ऐसा नहीं गया पहले खा ले, पहले सबको बांट करके आओ फिर उसके, ये रोज की है बुक में, अब बताइए ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा। फिर एक बार जो है ऐसे बैठे बैठे चर्चा में कि माँ तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत उपकार है, तो बोलती कि नहीं मेरा तो उपकार है ही, तुम सबका मेरे ऊपर उपकार है कि तुम संस्कारवान बन गए, इसलिए मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत उपकार है। और तुम्हारा उपकार तो तब मानूंगी, मेरे तो 42 जन्म अगर मेरी गृहस्थी अच्छी हो गई है, इसलिए तो 20 जन्म मेरे सुधर गए, इतने संस्कारवान बेटे हो गए। अगर मेरे बेटे कोई ब्रह्मचारी ले लें तो मेरे तो 42 वह सुधर जाए। और कहते कि तीनों बेटों ने बात सुनी और उसी समय संकल्प कर लिया कि माँ की 42 वह सुधरते हैं तो मुझे ब्रह्मचारी लेने में क्या दिक्कत। तीनों ब्रह्मचारी निकले, वालकोबा, शिवाजी और विनोबा, तीनों ने ब्रह्मचर्य लिया।
माँ के लिए चिमटा लेके आए थे
ये मुझे अभी इसमें मुझे अभी इसमें आया नहीं, पर इतना पढ़ के मुझे अभी लगा
आज दिल जाते थे इसलिए चिमटा लेके आए थे।
वे कहती कि विन्यास गृहस्थ आश्रम का अच्छी तरह से पालन करने से, वे कहती थी कि विन्यास गृहस्थ आश्रम का अच्छी तरह पालन करने से माँ बाप तर जाते हैं, पर ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरह से करने से 42 पीढ़ियाँ तर जाती हैं अपने बच्चों को। तो इस तरह से जो है मैं पुरुष होती तो तुम्हें दिखाती कि वैराग्य क्या होता है। माँ के जीवन के वैराग की प्रेरणा से विन्या बहुत प्रभावित हुए और ये रहा उनका। बचपन में पिता मिठाई का डिब्बा लाते थे गोल, एक दिन निकल रहे हैं वापस।
अच्छा, एयरपोर्ट पहुंचे बच्चे आएंगे।